श्रोताओं नमस्कार। बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी हमारे साथ आज का बाइबल अध्ययन करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से यशाया नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और इसका मुख्य विषय है मसीह का आगमन और छुटकारा। प्रिय श्रोताओं, हमें विश्वास है कि इस बाइबल अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। लीजिए, प्रस्तुत है ये बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से यशाया नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि प्रभु यीशु क्रूस पर क्यों चढ़ाया गया। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और उसको विस्तृत रूप से देखेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए, जिसके द्वारा से आप हमसे बोलते और बातचीत करते हैं, हमें सिखाते और समझाते हैं। आज जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, यीशु के क्रूस पर चढ़ाए गए कारणों को जानना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को आप अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि प्रत्येक भाई बहन आपके उस बलिदान को समझ सके और इस बात को जानने पाए कि आपने हमारे पापों के कारण अपनी जान दी है और हम इस बात को स्वीकार करने पाएं। आज के अध्ययन पर अपनी आशीष दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम अध्ययन कर रहे थे यशाया के पुस्तक में, क्रूस वह वेदी था जिस पर परमेश्वर का मेमना अर्थात प्रभु यीशु जगत के पापों को उठाकर ले गया। आइए अब सुनिए कि यशाया आगे क्या कहता है। यशाया की पुस्तक 53 अध्याय उसके 5 और 6 पद में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। ध्यान दीजिए, उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। इसे पढ़कर हमारे मन में प्रश्न उठेगा, हमें किस बात से चंगाई मिली? क्या हमें शारीरिक रोगों से चंगाई मिली? क्या इसका मुख्य अभिप्राय यही है? शमौन पत्रस को पवित्र आत्मा की प्रेरणा से इसका उत्तर मिला। पहला पत्रस की पत्री 2 अध्याय उसके 24 पद में कहता है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। जी हाँ, किस रोग से चंगे हुए? पत्रस यहाँ पर स्पष्ट करता है कि हम अपने अपराधों और पाप से चंगे हुए। अब 6वें पद पर ध्यान दें, इसका आरंभ सब के सब से होता है और अंत भी सबों से होता है। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, कुछ लोग नहीं। जी हाँ, सब के सब मनुष्य की वास्तविक समस्या क्या है? आपकी और मेरी मुख्य समस्या क्या है? यहाँ व्यक्त की गई है, हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। मनुष्य ने परमेश्वर का मार्ग त्याग कर अपना अपना मार्ग लिया। नीति वचन की पुस्तक 14 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। एक और नीति वचन है 3 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 6 पद में प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं। परंतु हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। यशाया स्पष्ट करता है कि प्रभु यीशु क्रूस पर आपकी और मेरी मृत्यु को भोग रहा था, सजा काट रहा था। उससे तो कोई चूक नहीं हुई थी, वह पवित्र, दोष रहित, निष्कलंक, शुद्ध और पापियों से पृथक अर्थात अलग था। वह एक प्रतिस्थापन था जिसे परमेश्वर के प्रेम ने आपके और मेरे लिए उपलब्ध करवाया था। निश्चय ही उसे सूली पर अर्थात क्रूस पर लटका देख हमारा मन सहानुभूति से भर जाता है। निश्चय ही हम ऐसे कष्ट और दुख से पिघलते नहीं हैं। यदि हमारे हृदय ना पिघलें तो हम वास्तव में निष्ठुर हैं। कहा जाता है कि फ्रांसीसियों के अगुए क्लोविस को प्रभु यीशु के क्रूसीकरण के बारे में बताया गया, तब वह उछल कर खड़ा हो गया और अपनी तलवार खींच कर चिल्ला पड़ा, काश मैं अपने फ्रांसीसियों के साथ वहां होता। परंतु मेरे मित्रों, प्रभु यीशु को आपकी सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है। उसने आपसे सहानुभूति पाने के लिए अपनी जान नहीं दी है, उसने हमें अपनी सुरक्षा के पक्ष में करने के लिए अपनी जान नहीं दी है। आपको स्मरण होगा कि जब वह कलवरी के मार्ग पर जा रहा था, तब यहूदी स्त्रियां रोती हुई उसके पीछे पीछे आ रही थी, तो उसने उनसे कहा, लुका रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसके 28 और 31 पद में, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो, क्योंकि जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ वे क्या कुछ ना किया करेंगे। उससे ना तो उनकी और ना ही हमारी सहानुभूति की आवश्यकता थी। मेरे मित्रों, कुछ लोग कहते हैं कि वह शहीद हुआ था। जी नहीं, वह शहीद नहीं हुआ था, क्योंकि वह अपने उद्देश्य में पराजित नहीं हुआ था। उसकी मृत्यु उन विश्वासियों के समान नहीं थी जो कहते थे कि मसीह उनके साथ है और वे आनंद के साथ स्तुति करते हुए मरते थे। उसकी मृत्यु की तुलना स्तेफनुस की मृत्यु के साथ करें। स्तेफनुस ने विजय सुर से कहा था, प्रेरितों के काम 7 अध्याय के 56 पद में, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिने ओर खड़ा हुआ देखता हूं। परंतु हमारे प्रभु यीशु की मृत्यु ऐसी नहीं थी, वह परमेश्वर का त्यागा हुआ था। मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय के 46 पद में उसने पुकार कर कहा था, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उसकी मृत्यु सर्वथा भिन्न थी, वह संसार के पापों को उठाकर अकेला मरा था। अब कोई कहेगा, प्रभु यीशु की मृत्यु को हम पर कैसा प्रभाव डालना चाहिए। जब हम उसके जीवन और मृत्यु पर विचार करते हैं तो निश्चय ही हमें पापों से मन फिराव के लिए बाध्य होना पड़ेगा। परंतु मनुष्य का यह अनुभव नहीं है। प्रसंगवश आपके जीवन के बारे में क्या कहा जाए, यह दृष्टिकोण इस पद की संतोषजनक व्याख्या नहीं है। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। जी हाँ, यह सब उसकी मृत्यु की व्याख्या के लिए पूरा नहीं है, क्योंकि वह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। उसने हमारा स्थान ले लिया, हमारे बदले में वह मरा। आइए आगे देखें उद्धारकर्ता का संतोष। इस समय मैं पद 3 का संदर्भ देना चाहता हूँ जो प्रभु यीशु के कष्टों का वर्णन करता है। लिखा है, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु के लिए कहा गया है कि वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि यीशु इस पृथ्वी पर एक दुखी मनुष्य था। इसकी पुष्टि के लिए कुछ यदा कदा ही घटनाएं हैं जो उसके रोने की चर्चा करती है। मैं इस विचार में सुधार लाना चाहता हूं। पद 4 में लिखा है कि उसने हमारे ही दुखों को उठा लिया। ध्यान दीजिए कि उसने हमारे दुख और कष्ट उठा लिए थे, उसके अपने दुख और कष्ट नहीं थे। वह पृथ्वी पर अपने सेवा कार्य में अत्यधिक आनंदित था। इब्रानियों की पुस्तक में उसके बारे में लिखा है 12 अध्याय उसके 2 पद में, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके सामने रखा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा। अतः उसके मुंह लटकाए हुए और गंभीर प्रकट करने वाले चित्र सही छवि प्रस्तुत नहीं करते हैं। क्रूस पर भी उसने बड़े आनंद से हमारा स्थान ले लिया। उसने क्रूस को हमारे पाप का मूल्य चुकाने के लिए वेदी बनाया। उस पर उसने हमारे पापों का दंड चुकाया। उसने स्वेच्छा से अपनी जान दी, क्योंकि पद 7 में हम पढ़ते हैं, जिस प्रकार भेड़ वध होने के लिए या वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। मेरे प्रियो, आप शायद सोच रहे होंगे, प्रचारक, मुझे तो यह बात समझ में नहीं आती है और न ही मैं इस प्रकार के धर्म की कोई परवाह करता हूं। मैं नहीं चाहता कि परमेश्वर मेरे लिए अपनी जान दे, मैंने तो उससे नहीं कहा है। यह सच है मेरे मित्रों कि आपने उससे कुछ भी नहीं कहा, परंतु मैं आपसे एक सीधा सा प्रश्न करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप यह तो मानेंगे कि मनुष्य ने इस संसार को भयानक संकट में डाल दिया है। मनुष्य की बुद्धि जीवन की समस्याओं का समाधान करने में सफल नहीं हुई है। क्या आपने कभी सोचा है कि मनुष्य आने वाले जीवन के बारे में गलत है? जब उसने परमेश्वर के समाधान को उंगली हिलाकर त्याग दिया, झूठा विज्ञान और व्यर्थ का दर्शन शास्त्र का भ्रम दैनिक जीवन की समस्याओं के समाधान में निरर्थक सिद्ध हुआ है, क्योंकि मनुष्य अनेक क्षेत्रों में गलत सिद्ध हुआ है, तो वह बाइबल के बारे में भी तो गलत ही होगा। मान लीजिए कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को आपके लिए मरने को दे दिया और उसने एक महान बलि दी, और यह भी मान ले कि क्रूस संसार के पाप का उपचार है और वह परमेश्वर का सर्वोत्तम कार्य है। यह भी मान ले कि आप उद्धार के इस अनुग्रहकारी प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं, तो क्या आप तर्क करके सोच सकते हैं कि परमेश्वर आपके लिए अनंत जीवन में कुछ करेगा? यदि परमेश्वर ने प्रभु यीशु को मरने के लिए दिया और उसने इस कार्य में अपना सामर्थ्य, अपनी बुद्धि और अपना प्रेम लगा दिया और अब वह आपकी प्रतीक्षा करता है कि आप उसके पास आ जाएं, तो इसकी अपेक्षा वह और क्या कर सकता है कि आपका उद्धार हो? इसके अतिरिक्त आपके विचार में परमेश्वर आपके लिए क्या कर सकता है, या उसके पुत्र का त्याग करने वाले किसी के लिए भी वह क्या कर सकता है? यदि आपके उद्धार का यही साधन है, तो वह इस पल भी आकर आपके लिए मरेगा। आपके लिए परमेश्वर के प्रेम को, वरदान को अस्वीकार करना कोई हल्की बात नहीं है। मेरे मित्रों, सुसमाचार की कहानी यहां समाप्त नहीं होती है। हम मृतक प्रभु यीशु की उपासना नहीं करते हैं, हम जीवित प्रभु की उपासना करते हैं। वह मरा ही नहीं था, वह मृतकों में से जयवंत जी उठा। वह स्वर्ग में चला गया। इस पल, इस क्षण वह स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने बैठा है। भविष्यद्वक्ता कहता है यशाया की पुस्तक 53 अध्याय उसके 11 पद में, वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। हमारा उद्धारकर्ता जीवित है और आनंद करता है, क्योंकि उसके कष्ट संतोषदायक थे। उसने हमारा नरक झेला कि हम उसके स्वर्ग में रहें। वह प्रसन्न है क्योंकि युगों से असंख्य लोग उसके पास आए हैं और अपराध मुक्ति पाई है और पाप के कोड़ से चंगाई पाई है। प्रभु यीशु ने कहा कि एक पापी के मन फिराने पर स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। यह संख्या लाखों से गुणा की जा सकती है। आज प्रभु यीशु के आनंद और संतोष की कल्पना करें। हमारा प्रभु यीशु आनंदित है, हमारा प्रभु यीशु अति प्रसन्न है और उसकी उपस्थिति में होना बड़े ही आनंद की बात होगी। मेरे प्रियो, आप उसके उस आनंद जीवन के वरदान को स्वीकार करके जो वह आपको देने के लिए ललकता है, तैयार है, उसके आनंद को बढ़ा सकते हैं। वह आपसे कुछ नहीं मांगता, वरन वह तो आपको कुछ देना चाहता है। यह वरदान उनके लिए है जिनके लिए पौलुस रोमियो की कलीसिया को लिखता है 4:5 में, जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। बस आपको जो करना है वह है, उसे वहीं ग्रहण कर ले जहां आप हैं। वह आपको क्रूस के तले बुलाता है जहां आपको अपने पापों की क्षमा प्राप्त होगी। काश यह आपकी और मेरी प्रार्थना हो, जिसे एलिजाबेथ सी क्लेपहन ने किया था। यीशु के क्रूस के नीचे मैं सहर्ष खड़ा होऊंगा, एक क्लांत देश में शक्तिमान चट्टान की छांव, जंगल में घर, मार्ग में विश्राम, दोपहर की चिलचिलाती धूप से और दिन भर के बोझ से प्रभु यीशु के क्रूस पर मैं देखती कभी कभी मरणहार का एक रूप, जिसने मेरे लिए सहा कष्ट, अपने दुखी हृदय के आंसुओं से दो आश्चर्य कर्मों का करती अंगीकार, मोक्षक प्रेम का आश्चर्य कर्म और मेरी अयोग्यता। जी हाँ, यह एलिजाबेथ की प्रार्थना थी और यह आपकी भी हो सकती है। पापी के लिए यह कैसी अद्भुत प्रार्थना है। इससे स्पष्ट है कि सबका उद्धार नहीं होगा, सबको यह प्रतिस्थापन स्वीकार करना होगा, अन्यथा वे नाश होंगे। यह भी स्पष्ट है कि बाइबल में मनुष्य का पूर्ण पतन व्यक्त है। हम अपने उद्धार हेतु स्वयं कुछ भी नहीं कर सकते, सबके सब अपराध और पाप में लीन है, एक भी बचा नहीं है, सब भटक गए हैं, सबके सब परमेश्वर के विमुख हो गए हैं, सबके सब अपने अपने मार्ग पर हैं। मेरे मित्रों, आज मुझे और आपको कुछ क्षण रुक करके देखने की आवश्यकता है कि आप कहां पर हैं, क्योंकि परमेश्वर आज भी आपको अवसर देता है। मित्रों, यहां पर 53 समाप्त होता है और अब हम 54 से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे, जिसका विषय है यहोवा की पुनः स्थापित एवं पुनः अवस्थित पत्नी, यहोवा की आनंदित एवं धर्मी पुनः स्थापित पत्नी। मेरे प्रियो, ध्यान दीजिएगा कि यशाया 53 के आगे का यह अध्याय तर्क सम्मत भी है। यह इसराइल के उद्धार और भावी महिमा का भजन है। सियोन का मुक्तिदाता आता है और एक दिन वे उसे देखेंगे। तो यहां पर हम देखेंगे यहोवा की पुनः स्थापित पत्नी, वह इसराइल से आमने सामने कहता है कि उन्हें भजन गाना है। आइए हम पढ़ें यशाया 54:1 में, हे बांझ तू जो पुत्रहीन है जय जयकार कर, तू जिसे प्रसव पीड़ा नहीं हुई गला खोलकर जय जयकार कर और पुकार, क्योंकि त्यागी हुई के लड़के सुहागिन के लड़कों से अधिक होंगे, यहोवा का यही वचन है। मैं तो गा नहीं सकता, परंतु यदि आप गा सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, परंतु एक दिन मैं भी गा पाऊंगा। मुक्ति संसार में गीत उत्पन्न करती है। संसार तो निराशा उत्पन्न करता है, परंतु उद्धार प्राप्त आशीषों का गीत गाते हैं। संसार भले ही संगीत बजाए, उद्धार प्राप्त मनुष्यों के पास सच्चा आनंद होता है। केवल उद्धार प्राप्त मनुष्यों के पास आनंद का गीत होता है। उद्धार प्राप्त मुक्ति का गीत गाएंगे, चाहे पृथ्वी पर हो या स्वर्ग में। हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 5:9-10 में इसे पाते हैं। वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मुहरे खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। मेरे प्रियो, यह कैसा चित्रण है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में तो यह कलीसिया के लिए कहा गया है, परंतु यशाया की पुस्तक 54 में इसराइल के विषय में कहा जा रहा है। कलीसिया को अछूती कुंवारी कहा गया है, जबकि इसराइल को एक पुनः स्थापित पत्नी कहा गया है। हे बांझ जय जयकार कर। पूर्व काल में इसराइल एक बांझ स्वरूप था। यह सारा के जीवन का संक्षिप्त रूप है। वह 80 वर्ष की एक निसंतान स्त्री थी। परमेश्वर ने उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उससे एक असंख्य जाति भी निकली। आप विचार करके देखें, अध्याय 53 में क्रूस की चर्चा के पश्चात गीत गाने का उल्लेख है। यह इसराइल को गीत गाने की पुकार है, परंतु आज इसराइल अपने देश में गीत नहीं गा पा रहा है। पूर्व काल में इसराइल एक बांझ स्त्री के स्वरूप था, परंतु भविष्य में उसकी पीड़ा का अंत होगा। अब तक तो उसकी प्रसव पीड़ा से केवल वायु उत्पन्न हुई है, जैसे पहाड़ों ने प्रसव पीड़ा के बाद एक चूहा उत्पन्न किया, परंतु उसका भविष्य महिमामय होगा, क्योंकि उसके अनेक संतान उत्पन्न होंगी। मेरे मित्रों, यशाया 54 उसके 2 पद में लिखा है, अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाएं, हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खूंटी को दृढ़ कर। मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए, इसराइल ने परमेश्वर द्वारा दिया गया प्रतिज्ञा का देश पूरा अपने अधीन में नहीं किया था। यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय उसके 4 पद में परमेश्वर ने उन्हें जो स्थान दिया था वह लगभग 300,000 वर्ग मील था। दाऊद और सुलेमान के राज्य में भी उन्होंने केवल 30,000 वर्ग मील का क्षेत्र ही अपने अधीन किया था, जबकि वह उनके वैभव की चरम सीमा थी। यह बहुत बड़ा अंतर है। परमेश्वर कहता है कि अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाएं। वे उस देश में सुरक्षित रहेंगे। उस दिन उन्हें अरबों का कोई भय नहीं होगा। सहस्त्र वर्षीय राज में वे अपनी वृहद सीमाओं का आनंद लेंगे। यरूशलेम नगर भी ग्रामीण क्षेत्रों में फैल जाएगा। उस समय यातायात अव्यवस्था नहीं होगी। यशाया 54 अध्याय के 3 पद में लिखा है, क्योंकि तू दाहिने बाएं फैलेगी और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा और उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाएगा। जी हाँ, आज अन्य जातियों ने इसराइल के प्रतिज्ञा के अधिकांश क्षेत्र पर अधिकार किया हुआ है, परंतु उन्हें अपनी सीमाओं में संकुचित होना पड़ेगा। आज की समस्या संसार में यह नहीं है कि मनुष्य दूसरों की सीमाओं का उल्लंघन कर रहा है, परंतु यह भी है कि देश भी एक दूसरे की सीमाओं में प्रवेश कर रहे हैं। यही तो सबसे बड़ी समस्या है। मनुष्य को अधिक और अधिक चाहिए। इसी का परिणाम होता है युद्ध। यशाया 54 के 5 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है, और इसराइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है, वह सारे पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा। उस दिन परमेश्वर उन्हें अपने उद्धार प्राप्त के रूप में ग्रहण करेगा। यशाया 54 उसके 6 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा ने तुझे ऐसा बुलाया है मानो तू छोड़ी हुई और मन की दुखिया और जवानी की त्यागी हुई स्त्री हो। तेरे परमेश्वर का यही वचन है। इसराइल आज एक व्यभिचारिणी पत्नी के समान है जिसे तलाक दिया जा चुका है। यह एक उपमा है जिसे हमें समझाने के लिए लिया गया है। यशाया 54 के 7 पद में लिखा है, क्षण भर ही के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी दया करके मैं फिर तुझे रख लूंगा। उस दिन इसराइल ही नहीं, हम सब अतीत को देखेंगे कि यह इस संसारिक जीवन में कैसे कष्ट रहे, और हमें ऐसा प्रतीत होगा जैसा पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को लिखता है, 2 कुरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय उसके 17 और 18 पद में, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। यशाया 54 के 10 पद में लिखा हुआ है, चाहे पहाड़ हट जाएं और पहाड़ियां टल जाएं, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा न टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। यदि आप सोचते हैं कि परमेश्वर अब्राहम के साथ बांधी वाचा नहीं निभाएगा, तो यशाया आपको स्पष्ट समझाएगा कि आप गलत हैं। परमेश्वर अपनी वाचा कभी नहीं तोड़ता है। हम देखते हैं कि यहोवा की आनंदित धर्मी पत्नी पुनः स्थापित है। यशाया 54 उसके 11 पद में लिखा है, हे दुखियारी, तू जो आंधी की सताई है और जिसको शांति नहीं मिली, सुन, मैं तेरे पत्थरों की पच्ची कारी करके बैठाऊंगा और तेरी नींव नीलमणि से डालूंगा। अब परमेश्वर इसराइल को शांति प्रदान करता है कि वह आनंद मनाए। तब हम आगे पढ़ते हैं यशाया 54 के 13 पद में लिखा हुआ है, तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी। इस दिन प्रभु का ज्ञान संपूर्ण पृथ्वी पर व्याप्त होगा, इस कारण शांति स्थापित होगी। तब यशाया 54 उसके 14 में लिखा है, तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी, तू अंधेर से बचेगी क्योंकि तुझे डरना ना पड़ेगा, और तू भयभीत होने से बचेगी क्योंकि भय का कारण तेरे पास न आएगा। धार्मिकता का पालन करने से भय मुक्ति प्राप्त होती है। अब धर्मशास्त्र के इस अद्भुत पद को भी सुने, यशाया 54 के 17 में लिखा है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे, यहोवा की यही वाणी है। मेरे मित्रों, आज ही नहीं, आरंभ ही से परमेश्वर यहूदी विरोधी का विरोधी रहा है। परमेश्वर की प्रजा का एक भी बैरी कभी समृद्ध नहीं हुआ है। इस तथ्य में हम एक उदाहरण देखते हैं, फिरौन, हमान, देरोदेश, हिटलर, ये सब यहूदी विरोधी थे। यहूदी विरोधियों को यह पद पढ़ना आवश्यक है। यह पद परमेश्वर की प्रतिज्ञा है जो उसने अपने लोगों के लिए की है कि वह अपने लोगों की सुरक्षा करेगा। मेरे मित्रों, यदि आज हम भी प्रभु यीशु के पास आते हैं और उसकी निकटता में रहकर उससे सुरक्षा मांगते हैं, तो निश्चय ही वह हमें हमारे पापों से छुटकारा देगा और हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएगा। मैं नहीं जानता कि आपका जीवन क्या है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी शरण में आए। यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा भी आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आप सबकी सहायता करे एवं आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
जाऊं कहां तेरा द्वार छोड़ के, हे प्रभु यीशु प्यारे,
जाऊं कहां तेरा द्वार छोड़ के, हे
आओ दर्शन भिक्षा दे दो,
आओ दर्शन भिक्षा दे दो,
आया हूँ शरण तिहारी।